कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। और संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा।
हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं जो भाई साहब का क्लास दोबारा हमको नसीब मिला है। तो बहुत बहुत करतल ध्वनि से हम भाई साहब का स्वागत करते हैं। भाई साहब का जो व्यक्तित्व है वो खुद सूर्य के समान है, जिनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु भाई साहब के साथ जो हमारे अनुभव है तो उसके लिए कुछ शब्द लिखे हैं कि भाई साहब आप राजयोग के प्रयोगी, अनुभव के प्रकाश हैं आप, सेवा समर्पण सहजता का आप जीता जागता विश्वास हो, जहां मौन न बोले वहां उनकी वाणी बोलती है, हर जिज्ञासा को समाधान की राह पर खोले, चलते हैं प्रेम से सिखाते हैं धैर्य का भाव, उनकी बातें बन जाए जीवन की नाव, सहज पुरुषार्थ करना सिखाते हैं, आत्मा को उड़ता पंछी बनाते हैं। हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में पुरुषार्थ करना ही भाई साहब के लेखक मनान जो लेख आते थे भाई साहब के ज्ञानामृत में उससे ही सीखा, उनके बच्ची के क्लासेस सुन के सीखा। और आज भाई साहब का विषय भी है सहज पुरुषार्थी कैसे बने। ओम शांति।
ओम शांति। मंजिल लंबी काम ज्यादा, सहज रूप से चलेंगे तो थकेंगे नहीं और गड़बड़ होगी तो थोड़ा ही जल्दी जाके थक के घर बैठ जाएंगे। बहुत लोगों का हो रहा है, थक जाते हैं, छोड़ो भगवान को क्या मिलेगा भगवान से, इधर ही रहो सुखी अपने गृहस्थ में, शादी करो। शादी करके भले ही पछताएं लेकिन डाइवर्ट हो रहा है बहुतों का माइंड। हमारी मंजिल बहुत लंबी है, संपूर्ण बनना, कर्मातीत होना, विकर्मों को नष्ट करना, धारणाएं श्रेष्ठ बनाना और इस संसार को छोड़कर जाने की तैयारी करना। संपूर्ण प्योर होना, ये सब बड़ी चीजें हैं। लेकिन इनको सहज बना दिया बाबा ने, वही चीजें हम आपके सामने रखेंगे। पहली चीज सभी को चेक कर दी है, सहज नेचर, इजी नेचर, इजी गोइंग नेचर हो। बहुत कुछ है संसार में, उल्टा सीधा सब है। इजीली काम करें। अब देखो बच्चे बैठे सामने, जब इनका एग्जाम होता है तो कई बहुत डरते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इजी रहो, नर्वसनेस आएगी नहीं। कई होशियार बच्चे भी कंपटीशन में बैठते ही नर्वस हो जाते हैं, जो सब याद था वो भूल जाता है, कहीं का कहीं टिक करके आते हैं हायर कंपटीशंस में, मुझे बताते हैं बच्चे। घर आके देखा हमें तो सब आता था, क्या गड़बड़ कर आए हम। इजी नेचर, हर फील्ड में इजी, इजी संस्कार। बाबा की एक बहुत पुरानी गुह्य बात आपके सामने है, 71 की है, 54 ईयर्स बैक। बाबा ने कहा तुम्हें सरल चित्त बनना है। पांच फायदे बताए, जो सरल चित्त, सरल माने इजी, जो सरल चित्त होंगे उनकी चाल, सरल चित्त बनो। बाबा ने कहा पांच बातें सुनाई, जो सरल होंगे उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। बड़ा भारी सीक्रेट है, क्योंकि सरलता से क्या होगा, हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, और जो व्यक्ति कम सोचता है उसके मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, समस्याएं हल्की लगती हैं, भारी नहीं लगती। दूसरी बात, उनके संस्कार भी सरल हो जाएंगे। पीछे बैठी हुई बहने यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जगह भी बहुत है, ये इनको भेजो, उठा दो। संस्कार भी सरल हो जाएंगे। ये जो टकराव होता है संस्कारों का संगठनों में, ये नहीं होगा। सहज भाव से जो सरल होते हैं वो जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, जल्दी मुड़ जाते हैं। सरल व्यक्ति कहीं टकराएगा नहीं, झुक के निकल जाएगा। देखो किसी पेड़ की टहनियां फ्लेक्सिबल हो तो तूफान चलेगा तो झूलेंगी, और फ्लेक्सिबल नहीं है तो पेड़ टूट के गिर जाएगा। तो संस्कारों में सरलता, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं वही सब करें। तो शिव बाबा को पता जो मैं चाहता हूं इनसे नहीं होगा, पता है या नहीं? बाबा के मूल्यों में आता है, मैं साक्षी होके भी देखता हूं, लेकिन ये भी देखता हूं कि सबका पार्ट अलग अलग है। आज भी था, ड्रामा के अधीन तुम चल रहे हो, बड़ी गहरी बातें हैं ये। रामा के अधीन तुम चल रहे हो, ज्यादा बात कह दी, मैंने यज्ञ थोड़ा ही रचा, ड्रामा अनुसार रचा, पर रचा तो उसने ही है, ड्रामा अनुसार यज्ञ तो उसने ही रचा है। पर देखो अपने को बाबा डिटैच करते हैं, हम भी सीख लें सरलता। बाबा को सदा ही नेचुरल संस्कार है बाबा का, मैं इनसे पुरुषार्थ करा रहा हूं, लेकिन करेगी वही जिन्होंने कल पहले किया था। इस ज्ञान को यूज करेंगे हम सब भी, जो पहले बने थे वही बन जाएंगे। मैं कितना भी जोर लगाऊं कोई थर्ड क्लास स्टूडेंट फर्स्ट क्लास हो जाए, होगा नहीं। जो सरल चित्त होंगे, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी, सहज समाप्त हो जाएंगी। उनकी संकल्प शक्ति बीमारियों को जल्दी ठीक करेगी, दवाई डबल काम करेगी। अगर संकल्प शक्ति पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, तो सरल चित्त व्यक्ति बीमारियों पे सहज ही विजय प्राप्त कर लेता। आपने देखा होगा, आप में से भी कई होंगे, छोटी सी बीमारी हो गई, हाय क्या होगा अब, मर गई मैं तो, पता नहीं क्या करूं अब। और कुछ लोग सहज भाव से सोचते हैं, कैंसर वाले मैंने देखे, डॉक्टर बताते हैं गांव के कैंसर के पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, पढ़े लिखे बहुत टाइम लेते हैं। गांव वालों क्या होता है, जैसे बुखार होता है चला जाता है, ये कैंसर भी कुछ होगा चला जाएगा। ज्यादा थिंकिंग नहीं, परेशानी नहीं। तो जो सरल चित्त व्यक्ति है वो ज्यादा नहीं सोचते, उसका इफेक्ट शारीरिक बीमारियों पर भी बहुत गहरा होता है। तो याद रखेंगे, जो बीमारी आई है वो जाएगी ही, हमारे साथ सुप्रीम सर्जन है, उसकी मदद हमें हो रही है, सहज भाव। और चौथी बात, जो सरल चित्त होंगे उनके संबंध रिलेशंस एक दूसरे से संपर्क, जिनके वो साथ संपर्क में आते हैं, वो भी सरल हो जाएंगे, लोग सहज मिलेंगे उनसे। आप देख सकते हैं दुनिया में कोई ऑफिसर ऐसे होते हैं उनके पास जाते भी लोग डरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं फटाफट चले जाओ, वो लोकप्रिय होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनकी प्रमोशन बहुत जल्दी होती है। जो टाइट होते हैं, कोई मिलने गया उस पर गुस्सा करते हैं, उनकी प्रमोशन भी रुक जाती है, उन्हें कोई नहीं पूछता, उनकी गुड रिपोर्ट होती नहीं कभी। पांचवी बात, बहुत सुंदर है ये बात, जो सरल चित्त होंगे उनका योग भी सहज हो जाएगा, सहज योग। सहज योग के लिए अव्यक्त बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, किसी को तो याद नहीं होगी, पर क्योंकि मेरे काम की बातें होती हैं तो मुझे याद रहती हैं। जो सहज योगी बन जाएंगे वही विश्व का राज अधिकार पाएंगे। सहज योगी माना मन को कंट्रोल कर लिया, और जो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर ले वो संसार को प्रकृति को कंट्रोल कर लेगा, संकल्प से ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो हम अपनी नेचर को सरल बनाएं, आज से सभी इस संकल्प को छोड़ दें, जो मैं चाहूं वही दूसरे करें, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। कई घरों में युगलों का झगड़ा होता है, मेरे पास आते हैं, बहन जी आती है, मैं उनसे पूछता हूँ, कहती है बहुत झगड़ते हैं हम दोनों, क्या गड़बड़ है। मैं दो चार बात पूछता हूँ, मुझे समझ में आता है। मैंने कहा बहन जी आप ये चाहती होंगी जो मैं एक्सपेक्ट करूँ वही ये करे। पहले तो हंसती हैं, फिर कहती हाँ ऐसे ही है। कुछ बहनें चाहती हैं वो पतियों पर राज करें, झगड़े शुरू। राज किस पे करना है, किस पे करना राज, अपने पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर, माया पर राज करना है। एक पे राज करने से परेशानियां ही बढ़ेंगी घरों में, इसलिए फ्लेक्सिबल करो, सरल करो अपने को, हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट है, सबकी बुद्धि अपनी अपनी, सबके कर्मों का खाता अपना अपना, हम किसी पर बोझ न बन जाएं। इसलिए संकल्प स्वीकार है, जो मैं चाहूं वही दूसरे करें, नो स्वीकार है ये, नो नो करेंगे ना। अब हमें वो करना है जो बाबा चाहते हैं। ये संकल्प बहुत सुंदर आपको मदद करेगा। एक लिस्ट बना ले आप, यहां सभी बनाएंगे, बाबा से मुझे क्या क्या लेना है, लिस्ट बनाओ। और पहले ये पता हो बाबा से हमें क्या क्या मिल सकता है, बहुतों को पता ही नहीं। बाबा को याद करना, बस ज्ञान मिल गया, बहुत अच्छा, जीवन में शांति आ गई, बहुत अच्छा हो गया, ये तो सब अच्छा है। लेकिन बाबा से क्या क्या लिया जा सकता है, लिस्ट तैयार करो, उसको लेने की प्लानिंग करें सभी। देखो क्या क्या लिया जा सकता है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कहता हूं आपको। ये वो समय है जब सर्वशक्तिवान से सारी शक्तियां ली जा सकती हैं। जो सारी शक्तियां ले लेंगे, जन्म जरम निर्भय रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, विल पावर बढ़ी होगी, घबराएंगे नहीं किसी भी जन्म में, हर जन्म में सिर पे ताज आएगा, सत्ता शक्ति से मिलेगी, सत्ता ताज आएगा कई जन्मों में। तो हमें बाबा से बहुत शक्तियां लेनी हैं, तैयार करें अपने को। दूसरी बात मैं थोड़ी बता देता हूं, बाकी आप सोचना। मुझे बाबा को अपना फ्रेंड बनाना है, गॉड फ्रेंड, खुदा दोस्त। चाहेंगे भगवान को अपना दोस्त बनाना, कौन कौन चाहेंगे, समझ लें, हिंदी समझ लें, तब तक बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा बनाने के लिए, सोचना ये भी है। भगवान दोस्त बन जाए तो सब कुछ इजी, किसी और को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा संसार दोस्त बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये प्राप्त कर सकते हैं संगम पर ही, ये ज्ञान मिलता है कि भगवान हमारा फ्रेंड बनने के लिए तैयार है। विचार करो। तीसरी बात, उससे जो चाहे वरदान ले सकते हैं, बहुत बड़ी प्राप्ति है वरदान। उससे जो चाहे वरदान ले सकते हैं, आगे चलकर बाबा से लिए हुए वरदान हमें विश्व सेवा में बहुत काम आएंगे। सोच लेना, विश्व सेवा करनी है। कल हम एक मुरली सुन रहे थे कार में आते हुए, दुखी आत्माएं प्यासी आत्माएं तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देख रही हैं, उन्हें मदद करो। विघ्नों में फंसी हुई आत्माएं, बीमारियों में उलझी हुई आत्माएं तुम्हारी ओर देख रही हैं, उन्हें मदद करो। तो अगर हम बाबा से अच्छे वरदान ले लेंगे तो हम इन आत्माओं को मदद कर सकेंगे। सोच लो कैसे लिया जाता है, हमने तो बहुत बार कराया क्लास में भी, वतन में जाकर सवेरे बाबा के सामने और तिलक देंगे बाबा, और फिर वरदान देंगे। उसे स्वीकार करना है कि बाबा से मुझे ये वरदान मिल गया। दो बातें लिख लें आपको, आप लिख लें दो बातें, बहुत गहरी हैं वो। वरदानों को वही बुद्धि धारण कर सकती है जो लंबे काल से ईश्वरीय नशे में रहती हो। वरदान उसी बुद्धि में धारण होते हैं जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हो। अर्पिता ईश्वरीय नशे की बात, ईश्वरीय नशे में रहने से संसार भूल जाता है। दूसरी बात है इसमें बहुत सुंदर, बहुत बहुत गहरी, वरदानों में शक्ति है, आग को पानी में बदलने की। वरदानों में शक्ति है, आग को पानी में बदलने की। आग जैसी समस्या पानी जैसी सरल तरल हो जाए, ये शक्ति है वरदानों में। बाबा से लिया जा सकता है बहुत ज्यादा भाग्य, जन्म जन्म हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ रहे। संगम युग पर हम दाता बन सकते हैं, हर जन्म में देने वाले रहें, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। संगम युग पर हम अपने को संपूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं, हर जन्म में इतना सब कुछ हमारे पास रहेगा कि आत्मा संतुष्ट रहेगी। यहाँ की प्राप्तियां जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगी। अब सोच लो, मैं आपको एक गहन चिंतन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये संगम युग का टाइम बहुत बहुत कीमती है हम सब के लिए, है या नहीं? कौन कौन समझते हैं, फायदा उठा रहे हैं? कीमती समय का फायदा उठाना चाहिए। तो इस संगम पर हम अपने हर जन्म का भाग्य निश्चित कर सकते हैं। बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप सवेरे उठकर अपने मन में विजन बनाना, मेरे 84 जन्म कैसे होने चाहिए, पहले एक सुंदर चिंतन करना, और कुछ दिन के बाद मेरा हर जन्म ऐसा हो, अपने को संकल्प देना पावरफुल, हर जन्म में मेरे सिर पर ताज हो, हर जन्म में मेरी बुद्धि फर्स्ट क्लास हो, हर जन्म में मेरा परिवार प्यार खुशियों सफलताओं से भरा हुआ हो, हर जन्म में मेरे साथ अथाह धन संपदा हो। जो आपको चाहिए जीवन में आप सब जानते हैं, संतान कैसी हो, पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, परिवार कैसे हो, बिजनेस धंधे कैसे हो, हर कार्य में सफलता मिले, सफलता का वरदान लिया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी चीज और जिस पे सबको ध्यान देना है, संगम युग पर बाबा से ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त कर लें, ये शब्द मुरलियों से है, पारस बुद्धि प्राप्त कर लें, डिवाइन इंटेलेक्ट प्राप्त कर लें, दिव्य बुद्धि, हर जन्म में बुद्धि हमें सुख देगी। आप जानते हैं जो संसार में बुद्धिमान होते हैं उनका जीवन, और जिनको कम बुद्धि होती है उनका जीवन कैसा होता है। स्टूडेंट लाइफ में किसी बच्चे के थर्ड क्लास मार्क्स आते हैं उसकी मेंटेलिटी, और किसी के 95 आते हैं उनकी मेंटेलिटी, एक का स्वमान बढ़ा होगा दूसरे का सिर झुका होगा। हर जन्म में मेरी बुद्धि कैसी हो, इसके लिए इसी समय न केवल बाबा से बुद्धि का वरदान लेना है, लेकिन सहज पुरुषार्थ के लिए अपनी बुद्धि को क्लीन करना है, स्वच्छ। सब काम करेंगे इस बात पे। कल भी मैंने कहा था, पांडवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आए हैं, संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान, फुल ऑफ स्पिरिचुअल पावर। जहाँ स्वयं ब्रह्मा ने तपस्या की, जगदम्बा ने तपस्या की, अनेक महान आत्माओं ने तप किया, जहाँ प्योर आत्माओं का वास रहा, चिंतन करना। अब मुझे अपनी बुद्धि में गंदगी नहीं भरनी है, इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। बहुत लोग इसको डस्टबिन बनाते हैं। आपके घर में कोई सोने की बाल्टी हो, आजकल तो नहीं है, पहले हुआ करती थी, सोने की बाल्टी में दूध रखेंगे या किचरा? कोई तो कुछ भी नहीं रखेंगे, छुपा के रख देंगे। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, स्वीकार करो, बाबा ने मुझे ये गोल्डन पात्र दिया है, इसमें मुझे ज्ञान रतन भरने हैं, वरदान भरने हैं, इसमें मुझे बाबा को बैठाना है। चिंतन आपके पुरुषार्थ को सरल करेगा। जिन लोगों के पास चिंतन नहीं होता, उनको हर चीज भारी लगती है, क्योंकि ये ज्ञान का बल बहुत बड़ा बल है, बहुत लोगों को इसका पता ही नहीं। इसलिए आजकल क्या फैशन हो गया, कोरोना के बाद मोड़ ली, ऑनलाइन बाथरूम में ही सुन ली। नहा भी रहे हैं, अमृत भी पी रहे हैं। कितना पिया जाएगा? आधा तो बाहर ही निकल जाएगा। मुरली जीवन में रस भरने वाली है, जीवनदायिनी है मुरली। केवल आप मुरली सुनने सेंटर में नहीं जाओ, मुरली बहुत एनर्जी देती है, वो एनर्जी लेने रोज जाओ। कई लोग मधुबन के लिए सोचते हैं, बाबा तो आता नहीं, बाबा आएगा भी नहीं, अब उसके काम को संभाल लेंगे उसके बच्चे, महान आत्माएं, अब वो दिन जल्दी आ रहा है। सोचते हैं मधुबन में जाके, शांतिवन में जाके क्या करेंगे, एक रूम में पांच पांच सात सात को रहना पड़ेगा, तकलीफ होगी, खाना भी तो साउथ इंडिया का नहीं मिलता, यहाँ का खाना तो हमें पसंद नहीं है। होता है, सबको अपना अपना खाना पसंद। यही टीवी पे सुन लेंगे, टीवी पे तो सुन लेंगे, लेकिन बाबा की ब्लेसिंग्स के पात्र नहीं बनेंगे। जब बाबा आते हैं उस दिन पूरा दिन बाबा की उपस्थिति रहती है वहां। जब अपनी बुद्धि को उससे जोड़ के रखते हैं और बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो एक सुंदर स्थान पर हम बैठे हैं। चिंतन शक्ति को बढ़ाएंगे सभी। बहुतों को चिंतन पूरी तरह भूल गया है। मुरली सुनते भी आए सेंटर में, बाहर निकलते ही चप्पल पहनते घर याद, जाके ये करना ये करना, वहां की मुरली वहीं रह गई। इसलिए जो आप में से सेंटर में मुरली सुनने जाते हो, वो बहुत बुद्धिमान है, और बाहर निकलने से और घर तक आने तक मुरली को रिवाइज करते रहो, वो एनर्जी देगी। मैं एक बात क्लासेस में बहुत सुनाई है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो दुनिया नहीं जानती उसको, मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। संकल्प खाली नहीं जा रहे, बैड संकल्पों से बैड एनर्जी, नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, प्योर संकल्पों से प्योर एनर्जी, पावरफुल संकल्पों से पावरफुल एनर्जी पहले ब्रेन को जाती है, फिर शरीर में फैलती है। हमारे यहाँ एक कैंसर के बड़े डॉक्टर हैं, एक सीट सेंटर में कुमार हैं वो। मैंने उनको कहा, आप जो ये रेडिएशन देते हो, कीमोथेरेपी देते हैं ना, जला देते हैं शरीर के अंदर जाके सारे कैंसर के जर्म्स को, और भी कुछ जल जाता है, गड़बड़ होती है। कईयों की तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। मैंने कहा क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं, मैंने पूछा उनसे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, बहुत पैसा कमाते हैं मास में। मैंने पूछा कितना कमाते हो मास में, 10 से 11 लाख। मैंने कहा किसी गरीब पे रहम भी करते हो, चुप हो गए। मैंने कहा नहीं, गरीब पेशेंट्स को फ्री इलाज करो, बाबा के बच्चे हो तो दुआएं मिलेंगी, दुआएं बहुत बड़ा खजाना है। तो मैंने उनको राय दी, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आप पेशेंट को भी सिखा सकते हैं, तुम सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हो, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे लाल किरणें फैल रही हैं शक्तियों की, ब्रेन भर गया है, पूरे शरीर में फैलने लगी हैं। एक मिनट फैला दो, पेशेंट फ्री होते हैं, 10 बार कर दो सारे दिन में, हर घंटे में एक बार कर दो, क्या ये बड़ा रेडिएशन का काम नहीं करेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करेगा। तो हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है, काम करेंगे इस पे सभी। जो संकल्प कर रहे हैं उसे एनर्जी पैदा हो रही है, बुरे संकल्पों से बुरी एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना सभी। जिसको क्रोध आता है, 10 मिनट क्रोध रहा, 10 मिनट में संसार की बैड एनर्जी उनके अंदर प्रवेश कर गई, इसलिए मन उदास होता है क्रोध के बाद, खुशी समाप्त होती है क्रोध के बाद, एकाग्रता होती ही नहीं है। पक्का है सबको, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। एक माता का उदाहरण मैं बहुत दे चुका हूं क्लासेज में, 5 बहनें ये ज्ञान में बाबा से मिल ली, बहुत समय पहले की बात है, मेरे पास आई मिलने, चेहरा सूखा हुआ था। मैंने कहा क्यों बहन, बाबा से मिलके खुशी नहीं हुई तुम्हें, चेहरा सूखा हुआ है? यहाँ तो सबके चेहरे पे रौनक आ जाती है शांति वन में आते ही। कहा नहीं, बाबा से तो मिलन हुआ, पर मुझे एक चिंता सता रही है, मेरी 3 छोटी बहनों को कैंसर हो गया है, एक की मृत्यु हो गई, अब मुझे डर सता रहा, 4th नंबर मेरा है। मैंने उसको बहुत समझा, उसको टाइम दिया, मैं इतना तो नहीं दे पाता, पर मैं उसको टाइम दिया और उसकी बुद्धि से ये संकल्प निकलवाया। मैंने कहा तुम तो कैंसर का आह्वान कर रही हो, बुला रही हो उसे, कैंसर न भी होने वाला है तुमको हो जाएगा। थोड़ा चेहरे पे चमक आई, संकल्प करो मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, थोड़ा चेहरा चमका। गलत संकल्प हमारी मनोस्थिति को, हमारे तन को गलत प्रभाव डालते हैं। इसलिए कल भी मैंने कही थी लास्ट में एक बात, मेरे साथ सब कुछ होगा ना, विश्वास के साथ भगवान हमारे साथ है, मैं भी बहुत भाग्यवान हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। देखो भगवान की बात पे तो सब विश्वास करते ही है ना, हमने सुना बाबा की मुरलियों में, जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा, जो कुछ होगा वो भी अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा। कहना तो सहज है, लेकिन किसके साथ बुरा हो गया हो वो कहेगा ये क्या, ये अच्छा थोड़ा ही था। तो बाबा ने अगली बार कहा, सदैव सोचो जो होगा बहुत अच्छा होगा, अगर बुरा होने वाला भी है वो भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कल शायद मैं सुनाई होगी अहमदाबाद के केस की, एक बहन वो भी लंदन जा रही थी, उसी फ्लाइट से देर हो गई उसे, अब उन्होंने काउंटर बंद कर दिया, उन्हें हाथ जोड़े, मुझे खोल दो, जरूरी जाना है, 50,000 तो लगते ही हैं टिकट के। बहुत रिक्वेस्ट की, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं। बेचारी निराश होकर घर लौटी। घर लौटी भी नहीं थी तो समाचार आ गया, ये हो गया। तब से भगवान को धन्यवाद देने के लिए मंदिर में पहुंची पहले ही, तुमने 50,000 में मेरा जीवन बचा दिया। जो कुछ होता है, कभी कभी बड़ी चीजें छोटी होकर निकल जाती हैं। मन को सहज भाव में ले आओ, खत्म हुआ। कोई बड़ी चीज हो गई, कोई बड़ा हिसाब किताब पूरा हुआ। सहज भाव से ले लो हर घटना को। हमें योग को सहज बनाना है, इंपॉर्टेंट चीज। उसके लिए बहुत सुंदर धारणा है। देखो बाबा ने कितना सरल ज्ञान दिया आत्मा का। आप कहेंगे बाबा रोज कह देता मैं आत्मा हूं, ये कौन सी बात हुई? आत्मा को जानने के लिए ऋषियों ने, आचार्यों ने जन्म जन्म प्रयास किए, बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं कौन हूं ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक गलती कर दी। वो गलती उनको पता नहीं, भारतीय फिलोसफी में एक गलती हो गई। मन बुद्धि आत्मा से अलग है, इसके कारण हमारी फिलोसफी उलझ गई। आत्मा क्या है फिर? किने कहा सूक्ष्म शरीर है वो है आत्मा मन बुद्धि के साथ। इस तीसरे ने कहा नो, मन आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, क्या है किसी को पता चला। आत्मा कहां से आई ये तो किसी के ड्रीम में भी नहीं आया। आप सब छोटे बच्चे भी जानते हैं परमधाम से आई। बाबा ने सरल ज्ञान दिया है, ये बहुत सरल ज्ञान। जिन्होंने वो चीजें पढ़ी नहीं ना, उनको लगता है बाबा रोज रोज आत्मा कह देता आत्मा, हम तो बोर हो गए सुन सुन के। अगर आप उस समय अभ्यास करो आत्मा का, तो इतना सुख मिलेगा मुरली सुनने में, बोरियत नहीं, गुह्यता समझ में आएगी। देखो सबसे गुह्य बात बताई बाबा ने। एक तो आप जानते हैं छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, लेकिन इससे भी गहरी बात, परम धाम में हर धर्म की आत्मा अलग अलग सेक्शन में रहती हैं। कोई इस पर कभी विचार नहीं करता। ब्राह्मणों में भी विदेशी आते थे हमारे पास, तो ये प्रश्न उठता था क्या एक आत्मा अपने सेक्शन से जंप देके दूसरे के पास नहीं जा सकते? नो, उनके वाइब्रेशंस उसको वहां से निकलने ही नहीं देंगे। कोई जंप देके इधर से उधर नहीं जा सकता। तब सहज भाव से दिन में लक्ष्य रख लो, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5 बार, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। मैं आपको कुछ अभ्यास बता रहा हूं ताकि मन बोर न हो। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। थोड़े दिनों में डिटैचमेंट की अनुभूति, अलग अलग हैं दोनों, मैं अलग ये अलग। दूसरा, मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं। सहज अभ्यास उठते ही शुरू करो। बाबा ने कभी ये ड्रिल बहुत कराई थी। उठते ही संकल्प करो मैं आत्मा परम धाम से इस देह में आ गई, बिल्कुल अलग। बहुत अच्छी प्रैक्टिस बाबा कराते थे सामने बैठ के साकार में। जैसे मैं परम धाम से ब्रह्मातन में अवतरित हूं, तुम भी अभ्यास करो, मैं भी परम धाम से इस तन में अवतरित हुई। क्लियर विजन है। नीचे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, शिव बाबा ऊपर से उतर के आते हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। हमारा शरीर भी नीचे है, मैं आत्मा ऊपर से इस तन में प्रवेश कर लिया। तीसरी प्रैक्टिस बिल्कुल सहज, आत्मा होने की, यह निराकार होने की प्रैक्टिस। कुछ देर के लिए बैठकर विचार करो, शरीर प्रकृति के तत्वों में मिल गया, रह गई निराकार आत्मा, चमकती मणि। इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम आप दे सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, शरीर को चलाने वाली एनर्जी है आत्मा, परमात्मा सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। तीन प्रैक्टिस हो गई, चौथी प्रैक्टिस मैं फरिश्ता हूं, ये भी आत्मा की प्रैक्टिस है। और पांचवी प्रैक्टिस मैं आत्मा परम धाम में हूं। घर में जाके बैठो, भले 10-10 सेकंड बैठो, 10 सेकंड की अनुभूति भी मन को डीप साइलेंस में ले जाएगी। दूसरी प्रैक्टिस बहुत सरल, इससे हमारा पुरुषार्थ और सहज हो जाएगा। स्वमान की प्रैक्टिस, सबको बहुत ध्यान देना है। और दो बातें ख्याल में रखें, स्वमान में रहने वालों को स्वतः ही दूसरों का सम्मान मिलता है। आप ऑफिस में हैं, सब आपका सम्मान करेंगे, आप घर में हैं, परिवार वाले आपका सम्मान करेंगे, विरोध नहीं होगा, कहाँ चली गई, ज्ञान ले लिया, ओम शांति में चली गई, ये वो सब खत्म। स्वमान से स्थिति ही अलग हो जाती है, चेहरे ही बदले रहते हैं। करके देखेंगे भाई लोग, मैं एक महान आत्मा हूं इस घर में, विद डीप एक्सेप्टेंस स्वीकार करेंगे, मैं इस घर में, अपने घर में महान आत्मा हूं। पहले 5-7 बार सोचें, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकल्प हुआ मैं महान हूं, गुड फीलिंग शुरू। बहनों को मैं बहुत अच्छा एक संकल्प देता आया हूं, आप में से कई करते होंगे, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस, इजी प्रैक्टिस है, ये कहीं शास्त्रों में किसी ने सिखाई नहीं, किसी तपस्वी ऋषि मुनि को आती नहीं थी, बाबा ने अपने बच्चों को ये बात सिखाई है। स्वमान बढ़ा दो, कम से कम 8 स्वमान ले लो अपने लिए, 8, उनकी प्रैक्टिस करो। बहुत प्रैक्टिस से वही जीवन बनता जाएगा। आप सोचेंगे मैं शिव की शक्ति हूं, शिव की शक्तियां आती रहेंगी। आप सोचेंगे मैं इस घर की, घर में पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता बढ़ती जाएगी। मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, पुण्य बढ़ते जाएंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, सोई हुई शक्तियां जगेंगी। 8 स्वमान चुन लो कोई भी, मैं पूर्वज हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, इस देवी हूँ, ऐसे 8 चुन लेना। विजय रतन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, आप सब इन चीजों को जानते हैं, लिख के रखो अपने पास, उनकी प्रैक्टिस होती रहे जीवन में। जिस स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे वही स्वरूप बन जाएगा। ये बाबा के एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़े रहस्य हैं। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्वमान को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, पुरुषार्थ बिल्कुल सहज होता जाएगा। पुरुषार्थ सहज उनका बहुत अच्छा हो जाता है जो अमृत वेले उठकर अपने को चार्ज कर लेते हैं। कोई इसमें चुस्त हैं, कोई ढीले हैं, कोई उठते हैं लेकिन उनको मजा नहीं आता, कोई सोने का आनंद लेते हैं, कोई भगवान से बात करने का आनंद लेते हैं। सोच लो हम कौन सा आनंद लेते हैं, क्या हम अमृत वेले को वैल्यू दे रहे हैं। कभी बाबा के सब थे जो अमृत वेले को वैल्यू देते हैं वे महान बन जाते हैं, अव्यक्त बाबा ने कहा था। तो वैल्यू देंगे और शुरू करेंगे सवेरे ही। एक बात सबको अंडरलाइन कर लेनी है, जीवन में अमृत वेले सुंदर चिंतन से दिनचर्या को शुरू करो, सुंदर चिंतन से समय को शुरू करो। बाबा के बहुत सरल शब्द हैं उस सुंदर चिंतन के लिए, बच्चे सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो, अव्यक्त महावाक्य थे। सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। आप उठते ही सोचने लगे खुले दिल से, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं, आंख खुले भगवान से मिलन। यहीं से खुशी चालू हो जाएगी, नशा चालू हो जाएगा, योग बहुत अच्छा लगेगा। योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करें सवेरे, लेकिन ये बात आज अंडरलाइन कर लें, चिंतन जितना सुंदर होगा जीवन उतना ही सुंदर हो जाएगा। और ये सुंदर चिंतन दो जगह से हमें मिलता है, बाबा की मुरली से और स्वमान से। जितना सुंदर चिंतन होना है उतना ही योग का रस जीवन में भरेगा। अपना लक्ष्य बनाएंगे सभी कुछ। देखो मैं आपको पुरुषार्थ का एक सरल तरीका सुना रहा हूं, सबको करना है क्योंकि समय तो आ गया है। कल भी हमने चर्चा की, समय आ गया है या नहीं, समय आ गया। लेकिन समय और विनाश की गति ऐसे ही चलेगी, बहुतों को लगेगा कुछ तो होता ही नहीं, संशय आता रहेगा, वो समय की गुह्यता को पहचान नहीं पाएंगे। उन सब के लिए जो ऐसा सोचते हैं, मैं बाबा का एक महावाक्य सुना देता हूं। बाबा विनाश ऐसा कराएगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। हो सकता है टीवी और मोबाइल बंद हो जाए, पता ही ना चले क्या हो रहा दुनिया में। तो समय की गुह्यता को जानकर अपने कदम तेज बढ़ाएंगे, प्लान बनाएं, लक्ष्य बनाएं। विधि है, तीन तीन मास का लक्ष्य बना लो। लक्ष्य एंड प्लानिंग, एम ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग दोनों होने चाहिए। लक्ष्य महान बन गया लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की तो लक्ष्य कभी मिलेगा नहीं। किसके पास एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ विशेष चीज बनती है, वो लक्ष्य बनाते हैं, सब ऑफिसर्स को लक्ष्य दिया जाता है, एक मास में इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो ऑफिसर्स उसका प्लान बनाते हैं, क्या क्या करना है, टीम को कैसे चुस्त करना है, क्या क्या बढ़ोतरी करनी है, और मशीनें चाहिए तो वो लगानी है। हम भी पुरुषार्थ की प्लानिंग करें। उदाहरण, आपने तीन मास का लक्ष्य बना दिया, मुझे तीन मास के एंड तक अपने योग के चार्ट को 3 घंटे तक पहुंचाना है। अब इसका लक्ष्य प्लानिंग कर लो, कैसे कैसे करना है। बैठकर कम, कर्मों में ज्यादा। क्योंकि सहज पुरुषार्थी वही बन सकते हैं जो कर्म योगी हों। बिना कर्म योगी बने कोई सहज पुरुषार्थी नहीं कर सकते, बन सकते। और बाबा की एक बहुत अच्छा महावाक्य है, कर्म योग ही तुम्हें कर्मातीत बनाएगा। कर्म में योग नहीं होता तो कर्म बंधन बन जाते हैं। हर कर्म हमें बांधने लगेगा, संबंध भी बंधन बन जाएंगे। इसलिए तीन मास की प्लानिंग, दूसरा संकल्प, मुझे ये तीन स्वमान तीन मास तक बहुत अच्छी तरह अभ्यास करने हैं। तीन मास में मुझे अपनी ये कमजोरी छोड़ देनी है। लक्ष्य बना लो, तीन मास नौ पर चिंतन, मुझे अपने बुद्धि सोने के पात्र में गंदगी भरनी नहीं है, न सुनना है, न वर्णन करना है, न चिंतन में लाना है। ऐसे लक्ष्य बनाओ, तीन मास मुझे खुशी को खत्म नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगा, खुश रहूंगी। ऐसी प्लानिंग, एक एक धारणा की, एक एक चीज छोड़ने की, दो तीन स्वमान की, योग अभ्यास के लक्ष्य को लेकर ऐसी प्लानिंग करेंगे तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलो पसंद आई बात, करेंगे? सबको करना है। और आप में से जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हो वो वीकली प्लानिंग कर लें, तीन मास की बड़ी प्लानिंग, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, एक एक वीक में मुझे ये करना है। कभी बाबा ने एक प्रैक्टिस कराई थी शुरू के दिनों में, रोज अपने योग के चार्ट को एक मिनट बढ़ाओ, ज्यादा नहीं, एक मिनट हर दिन बढ़ाना है। आज 15 मिनट हुआ, कल 16, फिर 17, फिर 18, तो एक एक मिनट बढ़ाने से भी एक साल में 4 घंटे से ज्यादा पहुंच जाएगा। ऐसी प्लानिंग करनी है, कर्म योग की प्लानिंग करें। कर्म योग करने वाले ही कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, कर्म योग से ही कर्मों में दिव्यता आएगी। इसलिए कर्म कॉन्शियस नहीं, कुछ याद रखो, मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूं। मेरा तो विचार है सभी करें, जो संगम युग पर बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस प्रभु मिलन से मिले हुए इस जीवन को संपूर्ण सफल करना चाहते हैं, अपने कर्मों की लिस्ट बनाओ, 16 कम से कम। हम सारे दिन में ये काम करते हैं, और हर काम के लिए एक प्रैक्टिस फिक्स कर दो, इस कर्म में ये प्रैक्टिस, इस कर्म में ये प्रैक्टिस। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारा सुना है इसमें। इस कर्म में प्रैक्टिस करेंगे बाबा को बुलाने की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो। घर से बाहर निकले, निकल रहे हैं, बाबा आ जाओ, फील करो आ गए, कहीं झंझट ही नहीं होगा, सुरक्षित घर वापस आएंगे। क्योंकि ऐसा भी समय आ रहा है जब घर से कोई बाहर निकलेगा श्योरिटी नहीं होगी वो आएगा या नहीं। अभी तो सिविल वॉर का खेल देखना है संसार को, जो बहुत भारी होता है। किसी कर्म में स्वमान के अभ्यास, किसी कर्म में अशरीरी होने के अभ्यास, किसी कर्म में बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है यह अभ्यास, किसी कर्म में मैं फरिश्ता हूं यह अभ्यास। तो सहज भाव से पुरुषार्थ अच्छा होता जाएगा। कर्मयोग की प्लानिंग खुद करनी है, जिनके लिए संभव है शाम को बैठकर भी योग करें, जिनको टाइम मिलता है एक घंटा शाम को बैठ जाए। शाम का योग बहुत पावरफुल होता है। सवेर तो किसी को नींद का इफेक्ट, किसी को संकल्प ही नहीं चलते अच्छे, भिन्न भिन्न तरह के इफेक्ट होते हैं। रात को कलयुग के इफेक्ट में सोए थे उसका इफेक्ट। अगर शाम को आपको टाइम मिले निश्चित करो बैठ के योग करना है, बड़ा आनंद आएगा। और एक बात और कह के मैं समाप्त करता हूं, एकांत योगियों के लिए वरदान होता है। एकांत में मनुष्य के विचार महान होते हैं और महान विचार ही पुरुषार्थ को सरल करते हैं, महान विचार ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं। बस ऐसा कुछ कुछ ध्यान देंगे, एकांत में अच्छा चिंतन, यहां से सीख के जाना बोल कैसे बोलने हैं मुख से। तीन बातें सुना देता हूं बस, अव्यक्त महावाक्य। किसी के बोल उन दिनों टेप रिकॉर्ड होती थी, किसी के बोल रिकॉर्ड करने वाले होते हैं, किसी के बोल महावाक्य होते हैं, जन्म जन्म चलते हैं, और किसी के बोल ऐसे होते हैं लोग सुनना ही नहीं चाहते। हमारे बोल वरदानी बोल हों, हमारे बोल सुखदायी बोल हों। दुआएं बहुत मिलेंगी और बाबा के महावाक्य हम सबने सुने हैं, दुआएं पुरुषार्थ को सहज कर देती हैं। इसलिए अपने कर्मों से, अपने बोल से, अपनी सेवाओं से सबकी दुआएं प्राप्त करेंगे। सेवाओं में टकराव हो तो दुआएं नहीं मिलेंगी, मैपन हो तो दुआएं नहीं मिलेंगी। इस तरह सभी को उन धारणाओं पे ध्यान देना है जो हमारे पुरुषार्थ को सरल करती हैं। फिर बहुत आगे बढ़ेंगे, यहाँ पाए हैं भाग को चमका के ही जाना, चमक रहा है ना। ओम शांति।